चलिए, अब इन सारी बातों को सुनने के बाद अब एक सवाल पैदा होता है कि फिर अब करें क्या? इतना कुछ तो सुन लिया, लेकिन अमल कैसे इस पे करें कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, वबिल वालिदैनी एहसाना, तो माँ बाप के साथ एहसान की क्या सूरत हो सकती है? डिटेल्स तो नहीं, सिर्फ पॉइंट्स दूंगी आपको ताकि आप अपने अमल के लिए कोशिश कर सकें। एहसान की पहली सूरत क्या है? कि उनके शुक्रगुजार हो जाएं, इस चीज़ की कदर करें कि वाकई उन्होंने हमें दुनिया में लाने और उसके बाद पालने पोसने में मेहनत की, शुक्रगुजारी, क्योंकि शुक्र से फिर इताअत जन्म देती है। फिर दूसरी बात, शिकवे शिकायत से परहेज करना है। बस लोग बड़े होने तक माँ बाप से शिकवे करते रहते हैं, इससे अवॉइड करना है। फिर वालदैन को खुश रखने की कोशिश करनी है, इनकी खिदमत करना है, आजजी के साथ पेश आना है, अदब और एहतराम करना है इनका, इनसे मोहब्बत का इजहार करना है, इनसे गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करनी है। इनकी इताअत और फरमाबरदारी करनी है, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है, इनके लिए दुआ का इख्तमाम करना है, और ख़ास तौर पे माँ का दर्जा तो बाप से ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा दर्जा है माँ का। फिर कुछ काम एहसान के जो हम दुनिया में जाने के बाद भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो वो थी जो दुनिया में उनके साथ कर सकते हैं, तो बाद में क्या किया जाएगा इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। हज़रत रबिया साइदी फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लम के पास हाजिर हुआ और एक अंसारी आया और अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे वालदैन की वफ़ात के बाद भी मुझे इनसे अच्छा सलूक करना चाहिए, यानी एहसान करना चाहिए, या फिर ये सिर्फ ज़िंदगी तक है? आपने फरमाया कि हाँ, 4 बातें तुझ पर ज़रूरी हैं। नंबर 1, इनकी नमाज जनाजा अदा करना, इनके लिए दुआए मगफरत करना, जो वादा उन्होंने किया था उसको पूरा करना, यानी किसी को देने का, कुछ कहने करने का वादा किया तो वो तुम पूरा करो। और 4थी बात, इनके दोस्तों का एहतराम करना, इनके रिश्तेदारों से सिला रहमी करना, और ये वो नेकी है जो इनकी वफ़ात के बाद भी तुम पर लाजिम है। इसी तरह हर वो चीज़ जो वालदैन को फ़ायदा दे, मैं चाहूँगी कि वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि अमली बातें सामने हो तो काम करना आसान हो जाता है। तो मरने के बाद, यानी ये 4 चीज़ें जो आपको बताई, इसके साथ अगली चीज़ क्या है कि वालदैन की तरफ से सदका खैरात करना, उनको अजर मिलता है, उनके माल में से करें या अपने माल में से करें, उनकी नियत से। वैसे भी अजर उनको आपके नेकियों का मिलता है, लेकिन जब माँ बाप की भी नियत साथ कर लेंगे तो इंशाल्लाह अजर बढ़ जाएगा। इनके वादे और इनकी नज़रें पूरी करना, अगर मुमकिन हो तो माँ बाप की कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना। इसी तरह आप देखिए कि अपने माँ बाप के साथ कुछ और माँ बाप भी होते हैं, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। बस आप देखिए कि रजाई माँ बाप, हमारे कल्चर में तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर कहीं हो भी तो वो औरत जिसने दूध पिलाया हो और उसका शौहर वो माँ बाप के मतलब दर्जे पे आते हैं, उतने हकूक नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इनका हक भी लाजिम है। अगली आयत में फरमाया, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे नफ्सों में है। इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा, जो कुछ तुम्हारे दिल में है अल्लाह इसे खूब जानता है। अगर तुम साले बनकर रहो तो ऐसे रजू करने वालों को माफ कर देने वाला है। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई, और वो क्या है कि बाज़ हालात ऐसे होते हैं कि इंसान तो माँ बाप के साथ अच्छा मामला करना चाहता है, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करते, या उनकी तबीयत के अंदर एक ऐसी बात आती है कि जिसकी वजह से इंसान महसूस करता है कि ये खुश नहीं होते। हमारी सारी कोशिशें इनके सामने बेकार होने की महसूस होती हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपनी जगह मुखलिस रहो। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारे रब को खूब पता है तुम्हारे दिल में क्या है। यानी एक एहसास दिलाया गया उस औलाद को कि जो मुखलिस तो है, लेकिन माँ बाप दोनों में से कोई एक या दोनों ही उसकी उस बात की कदर नहीं करते, खुश नहीं होते। तो फरमाया कि अल्लाह को पता है तुम क्या करते हो, क्योंकि जब इंसान दीन सीखता है ना, तो फिर उसका दिल चाहता है कि उसका सारे मामले अच्छे रहें। लेकिन वो लोग जो किसी भी नफसियाती उलझन की वजह से किसी से भी खुश नहीं हो पाते, तो अपने बच्चों से भी खुश नहीं होते, तो वो बच्चे अपने ऊपर एक गिल्ट महसूस करते हैं कि हम ऐसा फिर क्या मामला करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बात क्या है कि तुम उनके साथ अच्छा मामला करते रहो, तुम अच्छे हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे अच्छे जज्बात की कदर करेगा। और यहाँ ऐसी औलाद को जो सारी बातों को सुनने के बावजूद भी बात ना माने, फिर भी माँ बाप के लिए नरमी ना दिल में आए, तो उनको डरावा भी इसी आयत में है कि देखो फिर रब को पता है तुम्हारे दिल में क्या है। बाज़ दफ़ा इंसान ऊपर ऊपर से कोशिश करता है चापलूसी की, उनकी तारीफों की, उनकी बातों की, लेकिन दिल में उनके बारे में बुग़ज़ और इस तरह की बातें लाता है कि जिसकी वजह से वो हक नहीं अदा होता माँ बाप वाला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं यानी तुम्हारे दिलों के मामले जानता हूँ। बिल्कुल ऐसे लगता है कि तकवा की आखिरी सीढ़ी पे खड़ा कर दिया इंसान को ये कह के कि देखो वो माँ बाप है, 9वां माँ ने पेट में तुम्हें रखा, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है वो ना जाने कि अब तुम क्या सोचते हो, लेकिन मुझे मालूम है, लिहाजा उनके बारे में कोई गलत बात सोचते करते हुए सोचना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें पकड़ लूँ इस बात पे। क्योंकि माँ बाप की नाफरमानी जो है ना, ये ऐसा गुना है कि जिस पे अल्लाह ताला दुनिया में भी पकड़ता है। बहुत सारे गुनाहों की सज़ा आखरत में मिलती है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसके ऊपर अल्लाह ताला दुनिया में भी पकड़ता है, और वो उसमें से एक माँ बाप की नाफरमानी है। तो लिहाजा इंसान को बहुत ही ज़्यादा अंदर और बाहर से मुखलिस रहना चाहिए, इनके साथ अच्छा मामला रखे और इनकी बातों पर सोचे कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि जो पीछे नुक्ता अल्लाह ताला ने हमें दे दिया ना कि बचपन याद कर लो, तो यही नुक्ता अपने लिए की बना ले, जहाँ माँ बाप की कोई बात बुरी लगे अपना बचपन याद कर ले। मैं भी तो ऐसी थी, मैं न जाने क्या करती थी। बाज़ लोग कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का सारा ख्याल तो रखते हैं, हमने उनके लिए मुलाजिम भी रखे हुए हैं काम के लिए, और हमने उनके साथ माल की भी कोई कमी नहीं है, तो क्या फिर इसके बाद अब भी कुछ रहता है? तो आप देखिए कि इसका जवाब आप अपने आप से ही ले लीजिए। अगर बचपन में माँ बाप मुलाजिम रख देते, नोटों की गड्डियाँ पास छोड़ देते, एक वक्त का खाना भी खा सकते थे, दूध ना होता और वो तुम्हारे पास सोना चांदी भी रख देते, तुम तो भूखे रहते। तो जिस तरह तुम्हें उस वक्त मोहब्बत की ज़रूरत थी, केयर की ज़रूरत थी, इसी तरह उनको भी ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा लोग माँ बाप को इस तरह भी इग्नोर करते हैं, ये तो बूढ़े हैं, इनको घर पे छोड़ दो। सारे घर वाले खाने पे जा रहे हैं, दावत पे जा रहे हैं, और बूढ़ों को छोड़ दिया। आप सोचिए कि ये जज्बाती कत्ल है, कितनी दफ़ा ये कत्ल होगा। और अफसोस की बात है कि आज घर घर में ये कत्ल हो रहा है। बात करते नहीं, हम घर आते हुए आपके लिए खाना ले आएंगे, पोटली में बंधा हुआ खाना दे देंगे, लेकिन उनको तो आपकी कंपनी चाहिए, वो तो आपके साथ बैठना चाहते हैं, उनको तो आपसे बातें करना अच्छा लगता है। और आपके बच्चे, जो आपसे भी ज्यादा उनको प्यारे हो सकते हैं, तो उनको तो वो सब चीजें चाहिए। तो लिहाजा ये जो आपको एहसान की सूरतों में लिखाई थी कि उनको वक्त देना है, उनको तवज्जो देनी है, बैठना है। किसी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो जब अपनी माँ के पास जाते हैं तो अब बहुत लाइट मूड में जाते हैं और अपनी सारी वो नज़में और कहानियाँ याद करते हैं जो बचपन में माँ उनको सुनाती थी, और वो जाके माँ को सुनाते हैं। कितना अच्छा नहीं माँ को लगता होगा कि वो माँ वही सुनती है, और वो माँ इस तरह से इंतज़ार करती है अपने बच्चे का आने का। क्या वो शख्स अपनी जन्नत का रास्ता आसान नहीं कर रहा? ऐसी तो जन्नत मिलेगी कि उनकी खुशी का ख्याल रखना है। जैसे माँ बच्चे को खुश करने की कोशिश करती है, अगर इस तरह बड़ा भी कोशिश करे खुश करने की, तो आप देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा यानी फायदा होगा। कभी इंसान इन झुर्रियों वाले चेहरों के पीछे अपने आप को टटोले। मेरा तो दिल चाह रहा था, आज जब मैं ये तैयारी कर रही थी तो मैंने कहा तस्वीरें बनानी जायज़ नहीं है, और ख़ास तौर पे वो भी अपने हाथों से इंसानों की, वरना मैं सबको कहूँ कि अपने अपने चेहरों को बनाएं और उस पर झुरियाँ डाल के देखें कि आप कैसे लगेंगे। कभी हम भी जवान थे, आज हम ऐसे हो गए, या आज हम जवान हैं तो कल वैसे हो जाएंगे, तो कल उनके साथ भी तो यही मामला था। आज हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन कल हमारे, अगर ज़िंदगी रही तो, अव्वल तो ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन ये सारी कमजोरियां हमारे अंदर भी आनी है, ये सब कुछ तो होगा ना। तो लिहाजा इनको वक्त देना, बात करना अच्छे तरीके से, और फिर बड़ों को भी चाहिए कि लिए दिए ना रहें। बस बड़ों में एक कमी होती है, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, वो अपने एक हॉल में बंद हो जाते हैं उम्र के साथ। किसी से बेतकल्लुफ़ नहीं होना, या ख़ास बस लोगों के साथ अपनी राह और रस्म बढ़ाते हैं, ये अच्छा रवैया नहीं होता। ठीक है, इंसान बीमारियों की वजह से, परेशानियों की वजह से दुखी हो जाता है, लेकिन अगर इंसान अपने ऊपर कुछ पर्दे भी तान लेना, तो उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो इतनी मोहब्बत से आते हैं पास बैठने के लिए, और बड़े डांट देते हैं, ये तो ऐसा वक्त है और ये वैसा वक्त है। बाज़ दफ़ा वो बड़ी मोहब्बत से कोई तोहफा लेके आएंगे और वो इस तरह छुटकार देंगे, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आप उनके जज्बात को उनके दिलों में ही मार देते हैं, और एक वक्त आएगा कि फिर वो ये काम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा, बेशक वो अव्वाबीन के लिए बख्शने वाला है। अव्वाबीन कौन होते हैं? रजू करने वाले, यानी इन सारी बातों को सुन के अब अपनी इसलाह करने वाले, अपने हालात को बदलने वाले। गोया कि इसमें एक पैगाम यही दिया गया कि देखो अब पिछली जिंदगी में जो हुआ सो हुआ, अब लौट आओ। माँ कभी बुरा नहीं मानती, सारे दिन का भूला रात को वापस आता है तो माँ का दरवाजा खुला होता है उसके लिए। बच्चा माँ का दिल दुखा के जाता है और माँ उसी के लिए दुआएं कर रही होती है। एक मैंने कहीं कोई चीज़ पढ़ी थी, अब मुझे उसका थोड़ा सा याद आ रहा है कि शायद कोई पावर पॉइंट देखा था या कोई कहानी थी, कि एक बच्चे ने माँ को मार दिया, और माँ जब मरी तो उसका जो लिवर होता है ना, कलेजा, वो धक 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 की जैसे उसमें से आवाज़ आ रही थी, और वो उसी बच्चे के लिए दुआएं कर रही थी। एक बच्चा था और माँ का दिल तोड़ के घर से निकला, माँ को नाराज करके निकला, और माँ जल्दी से पीछे से आके आवाज लगाती है, देखो वो सामने मेन होल है, बच के निकलना, रास्ते में ऐसा ना कि तुम उसमें गिर जाओ। नहीं, माँ के दिल अल्लाह ने अजीब बनाए, जो दिल दुखाते हैं उन्हीं उन्हीं दिलों से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। आप अक्सर माँ को देखें तहज्जुदों में, मैं उसकी दुआ करती हूँ, इसकी बात करती हूँ, उसकी बात करती हूँ। यदि मैं वाकई इस चीज़ का इकरार करूंगी और मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि जो माँ आपके लिए दुआ कर सकती है वो दूसरा नहीं कर सकता, यानी मेरी जब भी अपनी माँ से बात होती है तो मैं देखती हूँ कि ज़्यादा वक्त उनका दुआओं में ही निकलता है। ये करती हूँ, उस तरह करती हूँ, ये करती हूँ, हमें पता भी नहीं होता अपने यहाँ मामलात की, और वो वहाँ कहती है मैं तुम्हारे लिए इस्तखारे कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुआएं मांग रही हूँ। ये कौन से जज्बे हैं? ये अल्लाह ने उनके लिए डाले हैं, तो हमें भी उनकी सारी कोताहियों को भूल के उनके लिए बेहतरीन दुआ करनी है। मुझे तो जितनी कसरत से ये दुआ करना अच्छा लगता है ना, रब्बे रहम हो माँ कमा रब्बे यानी सगीरा, कोई दुआ नहीं, मैंने अपने बहन भाइयों के लिए करनी हो तो भी मैं यही दुआ करती हूँ, क्यों कि मेरे बहन भाई को खैर मिलेगी तो मेरे माँ बाप को खुशी होगी, तो चलो मैं जरा, मैंने अपने लिए भी करनी हो, यकीन करें मेरी जुबान पे नहीं आती अपने लिए दुआ, समझ ही नहीं आती क्या मांगू, एक ही मांग देती हूँ, रब रहम हो मा कमा रब्बा यानी सगीर, क्या सोच के कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तो मेरे माँ बाप को भी तो खैर मिलेगी। तो बहरहाल एक मेरा अमल है, जरूरी नहीं कि आप इसको नोट करें, लेकिन हक तो क्या देना है, बस ये कि उनके लिए अगर दुआ करते रहें। और इस दुआ के बारे में आता है कि अगर किसी के माँ बाप उससे नाराजगी की हालत में फौत हो गए हो तो फिर अगर ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उनको राजी कर देगा। एक सहाबी आए थे नबी सल्लम के पास और उन्होंने आके यही कहा था कि मेरी माँ इस हाल में मरी कि वो मुझसे नाराज थी, अब मुझे इसका एहसास हुआ तो मैं क्या करूँ, तो आपने यही दुआ कही थी कि रब रहम हो माँ का माँ रब यानी सगीरा पढ़ो, अल्लाह ताला उनको राजी कर देगा तुमसे। दुनिया से चले गए, जितनी कसरत से आप उनके लिए सदका खैरात करें, नेकी के काम करें, उनके नाम पे सदका खैरात करें, इंशाल्लाह ताला वो राजी हो जाएंगे। दिल पे गिल्ट लेने की बजाय अमली कोशिशें की जाए, अमल की बात की जाए। दिल तो नहीं चाह रहा कि इस मौजू को आगे बढ़ाऊं, लेकिन अगली आयतों में कुछ और खूबसूरत बातें भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी, और वो क्या, वा आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, और कराबत वालों को भी उनके हक दो। तरतीब देखिए, पहले अल्लाह ताला के हक की बात थी, फिर माँ बाप के हक की बात, और अब दूसरे कराबत वाले। कैसे कराबत वाले के यहाँ लफ्ज़ क्यों बता दिया, कि जितना कराबत ज़्यादा होगी उतना हक ज़्यादा है। खूबसूरत असूल दिया गया कि जो जितना ज्यादा है उसका हक भी उतना है। अल अकरबु मिन अल अकरबी, जो करीब है उसके बाद उसके करीब, उसके करीबी करीबी। इसको मैं इस तरह से आपको बताऊंगी कि नबी सल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लम कुछ गुनाह हो गया था उनसे, कोई खता अपनी, कोई गलती याद आई, तो मैं क्या करूं, तो आपने फरमाया कि जाओ और अपनी माँ के साथ एहसान करो। इससे पता चलता है कि माँ के साथ बाप के साथ नेकी करने से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करते हैं। तो वो कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ नहीं है, फौत हो चुकी। तो आपने पूछा क्या तुम्हारी खाला है, तो कहा हाँ है, तो फरमाया कि जो अपनी खाला के साथ एहसान करो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। तो माँ के बाद खाला का रिश्ता आता है, और वाकई मुझे लगता है कि जो मोहब्बत माँ के लिए महसूस होती है वो खाला के लिए भी होती है। मेरी एक ही खाला है और मुझे इतनी प्यारी है, वो इतनी मुझे प्यारी है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जो बात मैं अपने दिल में सोचती हूँ ना, मैं उनके साथ कर सकती हूँ, क्योंकि माओं के साथ फिर भी कहीं कहीं लिहाज आ जाता है, लेकिन खाला के साथ वो लिहाज भी नहीं होता। फिर इसी तरह आप देखिए कि बहनें, जाहिर है कि बहन का रिश्ता उससे भी आगे है, और अल्लाह ताला ने ये दुख दर्द के रिश्ते बनाए हुए हैं, एक दूसरे की खुशी के रिश्ते हैं। फिर इसी तरह बाप के बाद चचा का रिश्ता होता है, जैसे बाप ना हो तो चचा में। आप देखिए कि कभी अपने माँ बाप के रिश्तेदारों को देखें, कैसे उनको देख के बाप याद आते हैं ना, यानी मुझे तो ऐसे लगता है कि ये रिश्ते जिनको हम भुलाए हुए होते हैं, कभी सोचते भी नहीं, और अब खास तौर पे जिस दौर में आज हम पल रहे हैं, कोई रिश्तों की पहचान ही नहीं है। चचा, फूफी, ताया, मामू, खाला, बच्चों ने इन सबको दो ही लफ्जों में समेट दिया, अंकल और आंटी। सारी दुनिया अंकल है और सारे आंटियाँ आंटी हैं, मोहब्बतों की मिठास ही ना रही। हालांकि आप देखिए मामा, मामू, कितनी मोहब्बत आती है इन लफ्जों को, असल लफ्जों में पुकारिए। अपने बच्चों को भी कहा करें कि उन्हीं लफ्जों से बोले, ताकि वो मिठास आए, वो मोहब्बत आए उनको इन रिश्तों से। फूफी को देखें तो बाप का चेहरा याद आ जाए, ताया को देखें तो बाप लगे, यानी इन रिश्तों को जितनी मोहब्बत देंगे उतनी मिलेगी। और अल्लाह ताला ने अब देखिए कि फ़र्क देखें कि माँ बाप के साथ बात की थी एहसान की, और रिश्तेदारों के साथ बात की तो हक की। इससे क्या पता चलता है कि इनका भी हक है इन हम पे। अब तफसीलात तो इंशाल्लाह हम अब इन सारी आयतों की अगले कोर्स में करेंगे, और बहुत ही करेंगे। आज मैंने कोई हदीस नहीं लिखाई आपको माँ बाप के हकूक़ पे और इन पे, क्योंकि मुझे पता है कि वो आप लिखेंगे इंशाल्लाह। नूरुल कुरान कोर्स में भी आपको लिखाई जाएंगी आगे भी, लेकिन आज का जो हमारा ये सारा मौका था, ये अपने दिल को हिलाने का था। लेकिन अगर दिल चाहे तो आप बाद में कुछ अहादीस नोट भी कर सकते हैं, अगर अपने मज़मून को पूरा करना चाहें। लेकिन यहाँ आप रिश्तेदारों के बाद वल मिस्कीन, और मिस्कीनों के हक दो। मिस्कीन कौन होते हैं कि जिनका गुजारा ना होता हो। हैंड टू माउथ, एक चीज है तो दूसरी नहीं, अभी एक पूरी कर ली तो दूसरी खत्म हो गई, अब उसके अंदर फिक्र पड़ी तो तीसरी चीज खराब हो गई। एक ऐसी कैफियत कि जिसमें वक्त रुकता हुआ लगे, इनको भी हक दो, वबन सबील, और मुसाफिर को भी हक दो, मुसाफिरों के हक दो, यानी रास्ते में किसी चीज की जरूरत पड़ गई, पानी की जरूरत है, उनके पैसे जेब कट गई, टिकट के पैसे नहीं है, कहीं कोई जा रहा है आपके पास से सफर पे, उसको खाना बना के साथ दें, उसकी सहूलत का सामान दें। ये बहुत बड़ी बड़ी नेकियां हैं जिसको इंसान कभी ज्यादा महसूस भी नहीं करता। और फिर क्या फरमाया, वला तुबज़िर तबज़ीरा, और फजूल खर्ची ना किया करो। क्यों? इसलिए कि इन्नल मुबज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। और शैतान कौन है? वकान शैतान लि रब्बिही कफूरा, और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ना शुक्र है। क्या ना शुक्री की थी उसने, उसकी नेमतों का इनकार, सजदे का इनकार और अकड़ का इजहार किया। यहाँ इसराफ की बात हुई, तबजीर का लफ्ज है, और तबजीर और इसराफ में थोड़ा सा फर्क होता है। इसराफ क्या होता है? जरूरत की चीजें हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च करना, मसलन खाने पे, पहनने पे, लिबास पे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, ये होता है इसराफ, ये भी पसंदीदा नहीं है। लेकिन तबजीर क्या होती है? जिस पे खर्च करना ही जायज ना हो, मसलन फखर, रिया, नमूदो नुमाइश, फिस्को फुजूर और इस तरह की गलत चीज़ों में, यानी नाफरमानी के कामों पे खर्च करना, इससे मना किया। आपने गौर किया ज़रा, पीछे हकूक की बात हुई माँ बाप की और एकदम इसराफ की बात क्यों हो गई? कभी सोचिए इस पे। हम दूसरों को देने के काबिल कब नहीं रहते जब हम खुद फजूल खर्चियां करते। अभी तो हमारी अपनी नहीं पूरी पड़ रही, और हकीकत है जितने अपने ऊपर बड़े बड़े बोझ कर्जों के लाद लेते हैं और जरूरियात को बढ़ा लेते हैं उतना दिल तंग होने लगता है। और आप तो हर वक्त अपने ऊपर ही रहम खाते हैं कि अभी तो मेरे ही पास नहीं तो मैं रिश्तेदारों को कहाँ से दूँ, मैं माँ बाप के लिए कहाँ से सदका खैरात करूँ। जरूरियात पे काबू पा लें, बात आसान हो जाएगी। आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक ये है कि आप अपने लिए कोई ऐसी चीज़ खरीद लें कि जिसके लिए अभी आपके पास पूरे पैसे भी नहीं, लेकिन आप सोचते हैं कि कुछ दे देते हैं, कुछ बाद में दे देंगे, चलो चीज़ अपनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन एक सोच ये भी तो आ सकती है कि अगर हमने अपनी जान अटका ली इसमें, कर्जों में ढल गए तो हाथ खींचने लगेगा। आज अगर कुछ देते हैं अल्लाह के नाम पे तो उसको देने से पीछे हटेंगे, आज किसी रिश्तेदार की को मदद करते हैं तो उसको देने को दिल नहीं चाहेगा। छोड़ो, अपना हाथ साफ रखो, जो है उसको सबके साथ मिल बांट के खाओ, और घर तो अल्लाह आगे जाके भी दे देगा। अगर ये सोच रख लें तो क्या हो, यानी मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ का तजिया किया, करीब था कि हम कोई ऐसी कोशिश करें किसी वजह से कि कुछ ऐसी चीज़ ले लें, लेकिन बाद में हमने यही सोचा क्या करना है, खामखा अपने ऊपर कर्जों का बोझ लादना, और दे भी सकते हैं कल हो जाए, क्या हो, बेहतर है जो अल्लाह ताला ने दिया है उसको अपने हाथ से इंसान दुनिया में मिल बांट के खा ले। तो लिहाजा कोशिश क्या करने की ज़रूरत है कि अपनी ज़रूरियात को मुख्तसर रखें। यकीन करें अगर ज़िंदगी में आपके माल को सही इस्तेमाल करना आ गया ना, आप कभी गरीब नहीं होंगे। मैंने देखा जो सलीका चार खवातीन होती हैं, 10-10 साल भी कारोबार में खराबियां आती हैं, मामलात बिगड़ते हैं, बस दफ़ा ऐसे भी मामले होते हैं कि कोई नागहानी आफात पड़ती हैं लेकिन कानो कान खबर नहीं होती। इस सलीके से वो घरों को चलाते हैं, और मर्दों पे तो खैर बहुत ही बड़े बड़े हमले होते हैं ना, उनको तो करोड़ों के लॉसेस होते हैं, लेकिन जिन्होंने संभाल के इस्तेमाल किया होता है, ज़रूरियात कम होती हैं तो वो उस मौके पर अपना वक्त गुजार लेते हैं। तो वक्त जैसा भी हो लेकिन मेहनतरवी अच्छी होती है। अब एक बात है कि आप किसी को देना चाह रहे थे, आपने उसको दे दिया, लेकिन दूसरी बात ऐसी भी हो सकती है कि कोई दूसरा ज़्यादा ही उम्मीद लगाने बैठ जाए, फिर क्या करें? तो उसका जवाब आगे दिया, वह इम्मतो रब्बिक और इस वजह पर एराज करो कि अभी तुम्हारे पास इन्हें देने को कुछ भी नहीं, लेकिन तुम अपने परवरदिगार की रहमत से ऐसी तवक्को जरूर रखते हो और इसकी तलाश में हो, तो इन्हें नरमी से जवाब दो। कितना खूबसूरत असूल सिखा दिया कि देखो, बाज़ दफ़ा कोई रिश्तेदार ज़रूरतमंद भी होता है और वो आपसे उम्मीद रखता है। अब आपके पास अभी उतना है नहीं और आप उनको बता भी नहीं सकते, कहना भी नहीं चाहते, तो फिर डांट दे। अमूमन लोग ऐसे वक्त में क्या बोलते हैं? हाँ जी, आपको तो हमारे हालात की खबर नहीं और आप तो हर वक्त हमारा ही दर पकड़ लिया। मैंने देखा है कि लोग किस तरह धुतकारते हैं ना उन लोगों को जो मदद के लिए दरवाजे पे आते हैं। पर मैं नहीं, अगर अभी नहीं है, कल आ जाएगा, तो तुम नरमी की बात करो, यानी उनको डांटो नहीं, उनके साथ बुरा ना मामला रखो। अगर मिल जाएगी, हाँ कि अभी नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हमारे पास माल आ जाएगा तो फिर दे दूंगा, यानी टाल दो या उसको उम्मीद बंधा दो, लेकिन डांटना नहीं है। और फिर साथ ही फरमाया, वला तज अल यदक मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और अपने हाथ को गर्दन से बांध कर ना रखो और ना ही इसे पूरी तरह खुला छोड़ दो। क्या होगा? फतक उदा मलूम महसूरा, वरना मुलामत ज़दा और दरमांदा बनकर रह जाओगे। यहाँ बड़ा खूबसूरत अदब सिखाया। ये जो कहा ना कि गर्दन से हाथ ना बांधो, ये मुहावरा है अरबी का, प्रोवर्ब्स जैसे होती हैं। इसका मानी कहते हैं बुखल करना। हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, फलां के हाथ बड़ा खुला है, फलां का तो हाथ में चीज़ टिकती नहीं, फलां के हाथ में सुराख है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, यानी ना तो बिल्कुल ही बुखल पे आ जाओ कि ज़रूरियात पे भी ना लगाओ, और ना ही इतने खुले हो जाओ कि तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे, यानी सारा अपना माल ही दे दो कि खुद लोगों से मांगने में कैफियत आ जाए, ऐसा भी ना करो। और इतने भी कंजूस ना हो जाओ कि तुम्हारी अपनी ही हर वक्त पूरी ना पड़े। इन्ना रब्बक यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, बेशक तेरा रब रिस्क को खोलता है जिसके लिए चाहे, वह यकदिर, और बंद कर देता है जिसके लिए चाहे। क्यों? इन्नहु काना बि इबादिही खबीरं बसीरा, क्योंकि वो अपने बंदों के साथ यानी उनके हालात को देखने वाला, खबर रखने वाला है, यानी उनकी हालत की खबर रखता है और उनके मामले को देखता है। यानी यहाँ आखिर में फिर ये बता दिया कि देखो, अल्लाह ताला के हाथ में है सारे खजाने। अगर अल्लाह ताला तुम्हें कहता है कि तुम दूसरों को दो, तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अगर तुम दोगे तो अल्लाह ताला खुद भी उनको दे सकता है। तुम्हें क्यों देना चाहता है? ताकि तुम्हारे हाथ से निकले तो तुम्हें इसका अजर मिले, वरना अल्लाह ताला खुद दे दे, उसके लिए क्या बड़ी मुश्किल है? कुछ भी तो मुश्किल नहीं है ना। तो लिहाजा आप जरा अब रब देखिए पिछली आयतों का। बज़ाहर जब मैं ये तैयारी भी कर रही थी, तो मैं महसूस कर रही थी कि बस आज तो हमारा मौजू माँ बाप का बात है, हम इस पे ही करेंगे, अगली बातों का ताल्लुक नहीं है इससे। लेकिन आपने देखा कि माँ बाप के बाद रिश्तेदारों के हकूक, रिश्तेदारों के बाद मिस्कीनों के हकूक, फिर उनके बाद इब्ने सबील के, अब यहाँ तक हकूक बताए, और फिर आगे वाले हिस्से में क्या बताया कि अमूमन इंसान क्यों नहीं ये हक दे पाता, क्योंकि बहुत तबजीर करता है, अपने माल को फजूल खर्चियों में इस्तेमाल करता है। फिर उसकी थोड़ी सी बात करने के बाद फिर बता दिया कि बीच का रास्ता रख लो। यानी खुलासा क्या है पूरे सबक का कि अमूमन इंसान दूसरों को क्यों नहीं दे पाता कि खुद अपनी ज़रूरियात बहुत बढ़ाता है। ज़रा महसूस तो करें, याद करें ज़रा, कब आखिरी बार हमने अपने रिश्तेदारों को या ऐसे गरीब लोगों की मदद की थी दिल से? एक तो होता है जो आ गए हैं तो जान छुड़ाने के लिए उसको 10-20 डॉलर पकड़ा दिए, दिल से कब किसकी आखिरी दफ़ा मदद की थी? पैसों की बात नहीं है, कब आखिरी दफ़ा मैंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया था? कब आखिरी दफ़ा मैंने अपनी खाला, फूफी, मामू, इनसे बात की थी? क्या ये वक्त नहीं है हमारा अपने साथ कुछ कमिटमेंट करने का? क्या आज ये वो मौका नहीं कि हम नियत करें कि हम इन सब भुलेवों को याद करेंगे? मैं इसका प्रैक्टिकली किस तरह से तजिया करती हूँ कि आप देखें कि बाद जब हम सोच लेते हैं, जैसे मिसाल है कि फ़ोन करना है, तो हमें बस एक ही बात है कि हमने माँ को फोन करना है। माँ को करेंगे, वो सारे रिश्तेदारों की खबर दे देंगी, फलां के ये खुशी हुई, फलां के ये गम, फलां के साथ ये मामला हुआ। अमूमन हम जब यहाँ से जाते हैं तो फिर भी हम अपने घर वालों ही के लिए तोहफे तोहफ ले जाते हैं। क्या ख्याल है, क्या हमें इन आयतों को सुन के अपने बाकी रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत? मैंने तो नियत कर ली, रात को ही जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने दिल में सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना रब्ता नहीं तोड़ती, जहाँ तक मुमकिन हो, यानी वो लोग भी इस चीज़ का एक को एडमिट करते हैं कि दूसरे मुल्कों में जाके तो कोई याद ही नहीं रखता, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने करीब के करूँ। लेकिन मैंने रात को ये करते हुए जो भी मेरे पास थे तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला अब ईद आएगी तो मैंने हर एक को करना है फ़ोन। इतना आप देखें सस्ता है, पाकिस्तान से भी सस्ता है, इधर भी सस्ता है, एक एक दो दो मिनट अपनी खालाओं को, अपनी मामुओं को, फूफियों को, आपको खानदान में जो मालूम है, जो बीमार लोग हैं उनको फोन करिए, आगे से आगे ताया की बेटियां, उनके बच्चे, क्या फर्क पड़ता है? क्या अगर अल्लाह के लिए अगर हम $20 के फोन कर लेंगे और नियत दिल में ये रखेंगे कि अल्लाह ताला के लिए, और खास अगर आप साथ अपनी दावा भी करना चाहते हैं तो ये शामिल कर लें कि ये हमारे सबक का एक हिस्सा था, हमने ये रिश्तेदारियों के हकूक पढ़े थे तो उसमें हमें ये मिला, तो इस पर ये प्रोजेक्ट हम सबके लिए कि हमने अब अपनी सहूलत के मुताबिक अब से लेके अगले कुछ दिन तक हमने अपने रिश्तेदारों को किसी न किसी तरह रब्ता करना है। ईमेल कर दें, फ़ोन नहीं कर सकते, ख़त लिख दें, किसी जरिए से पैगाम पहुँचा दें, लेकिन किसी न किसी तरह करें। और अगर उसी पैगाम में आप उनको कोर्स की दावत दे देंगे तो वो आपके $20 आपको पता नहीं $20,000 बन के वापस मिल जाएंगे। तड़प जितनी होगी ना, मैंने देखा है जितना तड़पते हैं ना किसी के लिए, अल्लाह ताला उतनी ही खैर दिलवाता है। और वाकई हकीकत भी यही है कि जो भी अल्लाह ताला इंसान से करवा दे वो दुनिया में मौके ना आज कर सकते हैं, कल ख़त्म हो जाएंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा। या अल्लाह हमने घर बचाओ के नाम से जो एक बहुत ही छोटी सी कोशिश की है या अल्लाह, तो इसकी बरकत से हमारे घरों में सुकून अता फरमा। माँ बाप के रिश्ते, औलाद के रिश्ते को बचा ले, शोहर बीवी के रिश्ते को पुरसुकून रिश्ता बना दे और हमारे घरों में दीन का दौर दौरा कर दे। या अल्लाह जो नस्लें दीन से दूर हैं उनको दीन की तरफ ले आ। जो शोहर और बीवी के दिल आपस में कटे हुए, या अल्लाह उनके दिलों को मोहब्बत से जोड़ दे। या अल्लाह रंजिशों को, रकावटों को दूर कर दे, एक दूसरे के लिए अच्छे खैर ख्वाही के जज्बात पैदा करने की हमें तौफीक दे कि हम किस तरीके से एक दूसरे को दुनिया में भी सुकून दे सकें और उनकी आखिरत को भी संवार सकें। या अल्लाह जो गलतियाँ हो गईं, जो खताएँ हुई, लग्जिशें हुई, अपनी रहमत से माफ़ कर दे। या अल्लाह लोग भी हमें माफ़ करें और तू भी हमें माफ़ कर दे। आइंदा के लिए हमें बेहतरीन बात की तौफीक दे। या अल्लाह हमें इस कुरान से जोड़ दे। या अल्लाह हर दिन हर रात हमारी इस किताब के साथ जुड़ने लगे। या अल्लाह हमें ज़िंदगी का मकसद समझा दे। या अल्लाह तेरे कलाम की एक आयत हमारा इतना हक रखती है कि हम उस पर गौर करें, तदब्बुर करें, तफक्कुर करें। क्या होगा कल क़यामत के दिन अगर इन हकूक को अदा किए बगैर तेरे पास चले गए? या अल्लाह अगर क़यामत के दिन इस किताब ने अपने वो पांच हकूक हमसे मांग लिए जो पूरे या कुछ हद तक अभी हमने नहीं दिए, क्या करेंगे? उस दिन तो कुछ भी नहीं पास होगा कि जो दे के जान छुड़ा ले। हक तो सवाल का जवाब होता है। या अल्लाह अगर हकूक ना पूरे किए तो तू पूछेगा। इस किताब के हकूक अदा करने की तौफीक दे। या अल्लाह हमें इसको पढ़ना सिखा। या अल्लाह हमें इसके मानी सिखा। या अल्लाह हमें इसके मफहूम और इसके मतलब सिखा। या अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक दे। या अल्लाह हमें इसको दूसरों तक पहुँचाने वाला बना। या अल्लाह हमारे वसाइल ऐसे कर दे कि हम इनकी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छी तरह इस चीज़ को इनके लिए पेश कर सकें। या अल्लाह हमें इनकी खिदमत की तौफीक दे। या अल्लाह ये बड़े प्यारे लोग हैं, तेरे कलाम के लिए घंटों बैठते हैं, कितना नहीं थकते होंगे। अल्लाह कितनी मसरूफियात छोड़ के बैठते होंगे, इनके दिल कैसे धड़कते होंगे। या अल्लाह तो उनके एक एक अमल पे इनको जुजा दे, बेहिसाब अजर दे। या अल्लाह हम तो इनकी कदर कर ही नहीं सकते, तो अपनी रहमत से इनकी कदरदानियाँ फरमा। या अल्लाह इनके लिखे हुओं को महफूज कर ले। या अल्लाह इनका ये बैठना इनकी नस्लों की इसलाह की तौफीक, या अल्लाह उसका जरिया बना दे। या अल्लाह हम पे अपनी रहमतें कर दे, हमारे उस्तादों पे अपनी रहमतें कर दे, हमारे रिश्तेदारों पे अपनी रहमतें कर दे। या अल्लाह हमारे माँ बाप पे अपनी रहमत कर दे। या अल्लाह जो जिंदा है उनको आफियत दे, तंदुरुस्ती दे। या अल्लाह मोहताजगी की जिंदगी से बचा। या अल्लाह अमान दे दे, उनके दिलों को हमारी तरफ से मुतमईन कर दे। उनके दिलों में औलादों के जो अंदेशे और गम हैं और जो उनको खदशे हैं, या अल्लाह उनको बेगम कर दे। या अल्लाह उनकी मांगी हुई दुआएं हमारे हक में कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी मांगी हुई दुआएं उनके हक में कबूल फरमा। या अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह हम इस दुनिया में मगन हो जाते हैं, न जाने वो कितने मुंतजर होंगे हमारी तरफ से नेकियों के, हमारी तरफ से दुआओं के। या अल्लाह हम तो उनको याद भी नहीं रखते। या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। या अल्लाह जो उन्होंने बचपन में हमारे लाड देखे, या अल्लाह जो हमारी तरबियत की, जो मेहनतें की, या अल्लाह उनके बेहिसाब अजर दे। या अल्लाह हमारे लिए उन हमारी वजह से उनके दर्जे बुलंद कर दे। या अल्लाह जो माँ बाप अपनी औलादों की तरफ से सताए गए, या अल्लाह उनको उसके बेहतरीन अजर अता फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया में अपनी औलादों की बेहतरीन तरबियत की तौफीक दे। या अल्लाह आज हम कुरान से जुड़ जाएंगे तो या अल्लाह कल वो भी जुड़ जाएंगे, आसान हो जाएगा उनके लिए। या अल्लाह हम अपने पीछे कैसी औलादें छोड़ के जा रहे हैं। या अल्लाह अगर हमें कलाम नहीं आता होगा, हमें कुरान नहीं समझ आएगा, हमारे बच्चों को कहाँ से आएगा, किस मुँह से कहेंगे उनको कि कुरान सीखो। या अल्लाह अभी जिंदा है, अभी मोहलत मौजूद है, या अल्लाह इस कुरान से जोड़ दे। या अल्लाह इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे, हमारे गमों और परेशानियों से बचने का जरिया बना दे। या अल्लाह हमारी सारी तमन्नाएं, सारी खुशियां इस कुरान से जुड़ जाएं। या अल्लाह हमें इससे जोड़ दे। या अल्लाह क़यामत के दिन अहलुल कुरान में से शामिल करना। या अल्लाह हमें अपने ख़ास बंदों में शामिल कर। या अल्लाह तेरे दीन के काम बहुत लोग करेंगे, या अल्लाह हमसे करा ले। या अल्लाह तू हमारे काम का मोहताज नहीं, ये तो हमारी ज़रूरत है। हम नहीं करेंगे कोई और कर लेगा, हम नहीं सीखेंगे कोई और सीख लेगा। या अल्लाह इन जगहों पे कोई और आके बैठ जाएगा। या अल्लाह तू हमें यहाँ बैठने वाला बना। या अल्लाह मैं दूसरों को इसकी दावत देने वाला बना। या अल्लाह हमें अपने अजर को बढ़ाने वाला बना दे। या अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ कर दे। या अल्लाह जितने साथी हमारे साथ इस सिलसिले में काम करते हैं और जो करना चाहते हैं, या अल्लाह इन सब के अजर को बढ़ा दे, इनकी कोशिशों को कबूल फरमा। या अल्लाह ये बात इतने सुकून से आगे नहीं पहुंच सकती अगर ये लोग काम ना करें। या अल्लाह इन सब पे अपनी रहमतें फरमा। या अल्लाह नाम नहीं लेना चाहती तो इन सब की परेशानियां दूर कर। या अल्लाह इनको रिज़्क़े हलाल और फराख दे दे। या अल्लाह इनके शोहरों को पुरसकून कर दे। या अल्लाह इनको बीमारियों से बचा ले। या अल्लाह कर्जों के बोझ से निकाल दे, इनकी औलादों को आंखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह इन सबको भी अपने माँ बाप के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।